أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اس نے مجھے آپ کے اس پیارے وطن تنزانیہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اور جیسا کہ میں بارہا پہلے بھی کہہ چکا ہوں, جس ملک کی بھی بات کروں, جس ملک میں بھی جاؤں, جہاں جہاں کسی وطن میں احمدیت موجود ہے یا جو ملک بھی احمدیت کا وطن ہے وہ میرا بھی وطن ہے. اور اس سے زیادہ میں کسی وطن کی محبت کی اور رنگ میں بات نہیں کر سکتا. اس لیے جو آپ کا وطن ہے وہ میرا بھی وطن ہے, اور جتنی آپ کو اس وطن سے محبت ہے مجھے آپ سے کم نہیں. درحقیقت اسلام کا ایک پہلو سے تو کوئی وطن بھی نہیں, کیونکہ تمام دنیا کا مذہب ہے, اور ایک پہلو سے ہر ملک اسلام کا وطن ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خدا تعالیٰ نے تمام دنیا کا فرما روا بنا کے بھجوایا تو اس وقت آپ عرب کے نہ رہے بلکہ تمام دنیا کے ہو گئے, اور آپ کے سچے غلام بھی دراصل یہ عالمی حیثیت رکھتے ہیں. پر جس طرح آپ کا وطن میرا وطن ہے, میرا وطن آپ کا بھی وطن ہے, اور اسی طرح جہاں جہاں احمدیت موجود ہے وہ سب دنیا کے سچے مسلمانوں کا وطن بن جاتا ہے. یہاں آ کر مجھے خاص طور پر اس لیے بھی خوشی ہوئی کہ یہ ہمارے ایک بہت ہی پیارے اور مخلص احمدی دوست عمری عبیدی مرحوم کا وطن ہے. بس وطن کی جو تعریف میں نے کی ہے وہ اپنی جگہ, لیکن اس کے باوجود ہم میں سے بعض جگہوں پہ پیدا ہوتے ہیں, وہاں شہری حقوق رکھتے ہیں, اس لحاظ سے ان کو اس وطن سے دوری نسبت ہو جایا کرتی ہے. بس یہ وہ وطن ہے کہ اس پہلو سے عمری عبیدی مرحوم کو یہاں سے دوری نہیں بلکہ تہری نسبت تھی, اور بھی کئی نسبتیں تھیں. وہ اس ملک کے ایک ہونہار فرزند تھے جو بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہے تھے, اور تمام ملک کی محبت اور امید کی نظریں ان پر پڑتی تھیں. بہرحال عمر میں وفا نہ کی اور وہ چھوٹی عمر ہی میں فوت ہو گئے, لیکن اتنی چھوٹی عمر میں اتنا بڑا وسیع اور نیک نام پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص سعادت عطا فرمائی تھی. اس لیے اس وطن میں آنا میرے لیے خصوصیت کے ساتھ ایک دل کی تسکین کا موجب ہے, اور ساتھ गम का भी, क्योंकि अगर उनकी जिंदगी में यहां आने की तौफीक मिलती तो और भी ज्यादा लुत्फ रहता। आज जो अजान आपने सुनी है जुमे से पहले, वो उन्हीं के खूनहार फर्जंद बकरी उबैदी साहब ने दी थी, जो वाकफ जिंदगी हैं और उन इंशाल्लाह अनकरीब जामे से फारग होकर उन तमाम नेकियों की अलमबरदारी का काम करेंगे इस वतन में आके, जो इनके वालिद ने की थी और जिनके वो हमेशा अलमबरदार रहे। दूसरा खास पहलू मेरे लिए खुशी का ये है, दूसरी खुशी की खास वजह यह है कि कल जब मैं आपके साथ मजलिस में बैठा तो मैंने अंदाजा लगाया कि अल्लाह ताला के फजल के साथ यहां की जमात में खुसूसियत के साथ इखलास पाया जाता है और दीन की मोहब्बत है और दीन के बारे में वो तदब्बुर और फिक्र करते रहते हैं। बहुत सी दूर दूर की जमातों के नुमाइंदे यहां तशरीफ लाए हुए थे, कोई 1000 मील थे, कोई 800 मील थे, कोई 700 मील थे। ये एक वसी मुल्क है जहां जमातें बहुत दूर दूर तक फैली हुई हैं और मुल्क के इक्तसादी हालात और मुआसलाती हालात ऐसे हैं कि जिसके नतीजे में सफर में बहुत ही सोखते हैं और माली लिहाज से दिक्कतें हैं, बहुत ज्यादा खर्च करने की उम्र दोस्तों में इस्तेमाल नहीं, उसके बावजूद नहायत ही तकलीफ दे सफर को तैयार करना और फिर इतना लंबा सफर और जिसमें बहुत ज्यादा खर्च भी करना पड़ा। ये मैं समझता हूं कि जब तक गैर मामूली जमात से मोहब्बत ना हो उस वक्त तक ये तौफीक नहीं मिल सकती। कोई हिस्सा दूर का ऐसा नहीं है जहां से दोस्त यहां तशरीफ नहीं लाए हुए थे और अभी बहुत से ऐसे हैं जिनसे तारुफ नहीं हो सका। आज शाम को जब हम इकट्ठे बैठेंगे तो इंशाल्लाह ताला उनसे भी मजीद तारुफ होगा। गुज़श्ता चंद साल से मैं ये जायजा लेता रहा हूं और ये देख ये बताते हुए मुझे खुशी महसूस हो रही है कि मुसलसल आपकी जमात में अल्लाह ताला के फजल से बेदारी के आसार नुमाया हो रहे हैं और जमातों में नश्व नुमा पहले से बढ़ती चली जा रही है। व्यवस्था चंद साल से पहले एक अरसा जरूर ऐसा गुजरा है जिसमें आपने कुछ आराम किया, कुछ गफलत की, कुछ नींद के मजे लिए। बहरहाल बिलमूम यूं मालूम नहीं होता था कि एक बेदार पुरखलूस जमात है जो अपनी पूरी जिम्मेदारियों का एहसास रखते हुए अल्लाह ताला की मोहब्बत में खिदमत दीन में मसरूफ है। इल्ला माशाअल्लाह चंद बैतें कहीं कहीं से आ जाया करती थी और चंद अच्छी खबरें भी मिल जाती थी, लेकिन ये महसूस नहीं होता था कि सारे मुल्क में बेदारी का एहसास है। अब अल्लाह ताला के फजल से मैं समझता हूं कि नुमाया फर्क पड़ रहा है और अभी और बहुत गुंजाइश मौजूद है। इस रफ्तार से अगर आप उठते रहे, बेदार होते रहे और नेक कामों में आगे बढ़ते रहे तो मैं उम्मीद रखता हूं कि बहुत जल्द इंशाल्लाह इस मुल्क में अजीमशान तब्दीलियां पैदा होंगी। जमात अहमदिया तंजानिया के लिए बहुत से नए मंसूबों की जरूरत है। जरूरत है कि यहां कसरत के साथ स्कूल फैलाए जाएं, ताकि वो छोटे दर्जे के ही हों, और जरूरत है कि यहां कसरत के साथ अस्पतालों का इंतजाम किया जाए, ताकि वो छोटे छोटे शफाखाने ही क्यों ना हों। इस ज़िमन में इंशाअल्लाह ताला तफसीली मंसूबे तैयार किए जाएंगे और मैं समझता हूं कि जहां जहां जमातों में अल्लाह ताला के फजल से बेदारी पाई जाती है उनका हक है कि उनकी हर तरह मदद की जाए। इसलिए खसूसियत के साथ उन जमातों और उन इलाकों को अवलियत दी जाएगी जहां बेदारी के आसार नुमाया हैं और हम करीब इंशाअल्लाह देखेंगे कि वहां जमात की तरफ से नेक कामों के कई मंसूबे बुरुएकार लाए जाएंगे। जहां तक शिफाखानों का ताल्लुक है, उसमें मेरे जहन में दो प्रोग्राम हैं। शिफाखानों में जहां तक ऐसे काबिल डॉक्टरों का ताल्लुक है जो सर्जरी भी कर सकते हों, ऑपरेशन का काम कर सकते हों, उसमें हमारे ज़राए कुछ महदूद हैं। और जब तक माहिर सर्जन बैरूनी दुनिया से अपने आप को वक्फ न करें, उस वक्त तक अफ्रीका की तमाम जिम्मेदारियां अदा नहीं हो सकती। इसलिए दूसरी सूरत यह है कि वो अहमदी नौजवान जो ज़हीन हों और साइंस की तालीम पा रहे हों, अगर वो डॉक्टर बनना चाहें और उनके माली ज़राए इसकी इजाज़त न दें, तो हम ऐसे तमाम अहमदी नौजवानों को जो अपनी ज़िंदगी खिदमत दीन के लिए पेश करना चाहते हों, उनको इंशाअल्लाह आला तिब्बी तालीम हासिल करने में मदद देंगे। इस तरह अफ्रीका के मुख्तलिफ मुल्कों में मुकामी अहमदी वाकिफ ज़िंदगी दोस्त ऐसे पैदा हो जाएंगे जो यहाँ या बाहर जाकर दूसरे मुल्कों में आला तिब्बी तालीम हासिल करें और वापस आकर फिर अपनी कौम की और जमात की खिदमत करें। दूसरी सूरत यह है कि यहाँ होम्योपैथिक डिस्पेंसरियाँ कायम की जाएं और होम्योपैथिक इलाज क्योंकि बहुत ही सस्ता है, इसलिए ये मुमकिन है कि बहुत जल्दी तमाम अहमदी जमातों में या बाद दूसरे ऐसे इलाकों में जो गुर्बत की वजह से महंगा इलाज ना करवा सकते हों, हम होम्योपैथिक तबीबों का जाल फैला दें। होम्योपैथिक इलाज अमूमन अफ्रीका के ममालिक में मारूफ नहीं और अफ्रीका की कोई एक भी हुकूमत नहीं जो होम्योपैथिक इलाज को तस्लीम करती हो। इस पहलू से कुछ कानूनी दिक्कतें हमारी राह में हायल हो सकती हैं, मगर उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला वो भी दूर हो जाएंगी। जब मेरी सेरा लियोन के प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात हुई तो उनको भी मैंने ये मशवरा दिया और उन्होंने बड़ी संजीदगी और हमदर्दी से इस मशवरे को सुना। मजीद गुफ्तगू शनीद होगी इंशाअल्लाह और हम उम्मीद रखते हैं कि सेरा लियोन की हुकूमत इसे तस्लीम करके इससे फायदा उठाएगी। अभी हाल ही में तीन दिन पहले मैं युगेंडा में था। युगेंडा के सेहत के वजीर और युगेंडा के तालीम के वजीर से भी मेरी इस मामले में तफसीली गुफ्तगू हुई। अगरचे उनको इससे पहले कुछ भी इल्म नहीं था कि होम्योपैथिक क्या चीज है, लेकिन जब मैंने उन्हें तफसील से समझाया तो उनको उनमें नुमाया दिलचस्पी के आसार देखे। इसलिए मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाअल्लाह यहां की हुकूमत से भी अगर गुफ्तगू शनीद की गई तो वो जमात अहमदिया को इस मैदान में खिदमत की इजाजत दे देंगे। युगेंडा के वजीर तालीम और जमात से मैंने ये भी वादा किया है कि मैं बहुत जल्द वहां एक होम्योपैथिक स्कूल का इजरा करूंगा इंशाअल्लाह। इस गरज से तमाम दुनिया में वो अहमदी जो होम्योपैथिक की बाकायदा सनद रखते हों और तालीम याफ्ता हों, उनसे मैं अपील करता हूं कि अगर वो अपने नाम खिदमत दीन के लिए पेश करना चाहें तो एक साल, दो साल या तीन साल, कोशिश करें कि तीन साल तक के लिए अपने आप को जरूर वक्फ करें, क्योंकि मैं समझता हूं कि सिर्फ युगेंडा ही में नहीं, तंजानिया में भी एक होम्योपैथिक कॉलेज या स्कूल खोलना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि आपके बहुत से नौजवान जो वैसे बेकार हैं उनको अल्लाह ताला के फजल के साथ एक जरिया माश भी मुयस्सर आएगा और वो आजादाना अपने लिए एक लाहे अमल तलाश कर सकेंगे। यानी जहां चाहे रहें उनके लिए कोई पाबंदी नहीं रहेगी, जिस इलाके में जाना चाहें खिदमत दीन भी करें और अपना अपनी रोजी भी खुद कमाएं। और मुल्क को जरूरत इतनी है यहां कि हकीकत यह है कि यहां की अक्सरियत सही मानों में तिब्बी इमदाद से महरूम है, इसलिए हर पहलू से इस स्कीम में इंशाल्लाह बरकत ही बरकत होगी। तिब के अलावा और भी बहुत से ऐसे प्रोग्राम हैं जिनसे इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता आपको मुतारफ किया जाएगा। और जहां तक जमात अहमदिया आलमगीर का ताल्लुक है, वो ये फैसला कर चुकी है कि अपने अफ्रीकन भाइयों की हत्तल मजदूर खिदमत करेगी, और खिदमत की नई नई राहें अल्लाह ताला हमारे सामने खोलता चला जा रहा है। और इस सिलसिले में यहां जाने से पहले मजलिस आमला में तफसीली गुफ्तगु भी करूंगा, और मैं उम्मीद रखता हूं कि खुदा ताला के फजल के साथ अब जमात यहां एक बहुत ही अहम किरदार अदा करने वाली है। तंजानिया की जमात के लिए या तमाम जमातों बल्कि अफराद के लिए मेरी तीन नसीहतें हैं जिनको मैं उम्मीद रखता हूं आप तवज्जो से सुनेंगे और उन पर अमल करने का वादा करेंगे, इकरार करेंगे, दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको इन वादों और इकरारों पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। पहली नसीहत तो ये है कि नमाज को कायम करें। जहां तक नमाज का ताल्लुक है, अल्लाह ताला के फजल से मेरा अंदाजा है कि यहां नमाज का मेयार काफी अच्छा है और बहुत से दूसरे ममालिक के मुकाबले पर यहां नमाजों की तरफ तवज्जो है। लेकिन खुदा ताला ने कुरान करीम में नमाज पढ़ने की हदायत नहीं फरमाई बल्कि नमाज को कायम करने की हदायत फरमाई है, और नमाज कायम करने के बहुत से मतालिब हैं। वो नमाज जो बगैर समझ के पढ़ी जाए उसे हम नमाज कायम करना नहीं कह सकते, क्योंकि कयाम एक ठोस चीज को कहते हैं, एक ऐसी चीज जो मजबूती के साथ नसब हो चुकी हो और अपने अपने पांव पर खड़े रहने की ताकत रखती हो। इसलिए नमाज के लवाजमात को दुरुस्त करना भी जरूरी है और उसकी बुनियादों को दुरुस्त करना भी जरूरी है। इस पहलू से मैं समझता हूं कि तमाम जमातों में ये तहरीक चलनी चाहिए कि वो मुअल्लिम का इंतजार न करें बल्कि उनमें से जो भी नमाज का तर्जमा जानता हो और मुत्तकी हो और कुछ न कुछ साहिब इल्म हो वो अपने अपने हां दर्स कायम करे और खसूसियत के साथ नई नस्लों को नमाज का तर्जमा खूब अच्छी तरह याद करवाया जाए। और जमात की ख्वातीन को इस प्रोग्राम में जरूर शामिल किया जाए। अगर आपकी औरतें और आपकी बच्चियां नमाज का तर्जमा अच्छी तरह समझ लें और इसके साथ ही नमाज के मसाइल, क्योंकि नमाज के कयाम में नमाज के मसाइल भी शामिल हैं, वुजू किस तरह टूटता है, गुसल कब वाजिब होता है, क्या पहले करना चाहिए, क्या बाद में करना चाहिए, दुआएं क्या क्या हैं, आदाब क्या हैं, नमाज बाजमात पढ़ने के सिलसिले में मसाइल क्या हैं, ये सारी वो बातें हैं जो मिलकर नमाज को कायम करती हैं। इसलिए जब मैं कहता हूं नमाज को कायम करें तो मेरे जहन में ये सारा प्रोग्राम है तफसीली। इस पहलू से जहां मुअल्लिम मुयस्सर हैं वहां मुअल्लिमीन को अव्वलियत इस काम को देनी चाहिए, जहां मुअल्लिम मुयस्सर नहीं है जैसा कि मैंने बयान किया है वहां के साहिब इल्म नेक लोग अपनी तरफ से फौरन दर्स जारी कर दें और ख्वातीन को नजरअंदाज न करें, यह सबसे अहम बात है। जैसा कि मैं कह रहा था, अगर आपकी औरतें और आपकी बच्चियां नमाज को कायम करने वाली बन जाएं तो खुदा ताला के फजल से आइंदा सैकड़ों साल तक आपकी नस्लें महफूज हो जाएंगी, क्योंकि घरों में औरतें ही हैं जो बचपन से कौम के दिल में किसी बात की अजमत पैदा किया करती हैं। दूसरी नसीहत यह है कि तबलीग के काम को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाएं और हर अहमदी मर्द हो या औरत, बड़ा हो या छोटा, कोशिश करे कि अल्लाह ताला के फजल के साथ उसे साल में कम से कम एक और अहमदी बनाने की तौफीक मिले। इस सिलसिले में जिन लोगों को इल्म नहीं है वो घबराते हैं, वो समझते हैं कि जब हम दूसरे से बात करेंगे तो उसे क्या बता सकेंगे। लेकिन तबलीग के लिए अव्वल तो बहुत इल्म की जरूरत नहीं है। हकीकत यह है कि अगर आप खुदा ताला से मोहब्बत रखते हों और दुआ करते हुए उसकी खातिर लोगों को नेकी की तरफ बुलाना शुरू करें तो आपकी बात में एक खास बरकत पड़ती है, आपकी बात में वजन पैदा हो जाता है और कुव्वत अता होती है उसको। इसलिए वो दावत अल्लाह करने वाला, वो खुदा की तरफ बुलाने वाला जो खुदा की मोहब्बत से आरास्ता हो, उसके दिल में खुदा की मोहब्बत सजी हुई हो और वो दुआ करता हो, उसकी राह में कभी भी इल्मी कमजोरी हायल नहीं हुआ करती। इसलिए अल्लाह ताला पर तवक्कुल करें और नेकी इख्तियार करते हुए खुदा की खातिर साफ लफ्जों में हमदर्दी से लोगों को अहमदियत की तरफ बुलाना शुरू करें। जहां तक इल्म की कमी का ताल्लुक है, उस कमी को आज के जमाने में किसी हद तक कैसेट्स के जरिए पूरा किया जा सकता है। कुछ तबलीगी मजमून पर मुश्तमिल कैसेट्स केनिया में बनी हुई हैं जो अच्छी इल्मी हैसियत रखती हैं, और कुछ आप अपने हालात में यहां खुद तैयार कर सकते हैं। आपके यहां अल्लाह ताला के फजल से मरकज़े सिलसिला में तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता मुरब्बियान की एक बड़ी तादाद काम कर रही है, जिनमें बहुत से ऐसे हैं जो खुदा ताला के फजल से खुद तंजानिया मुल्क के बाशिंदे हैं, उर्दू भी जानते हैं और सवाहिली तो उनकी अपनी जुबान ही है, अरबी से भी वाकफियत रखते हैं। इसलिए वो इस काबिल हैं कि अगर चाहें तो छोटी छोटी आसान तबलीगी कैसेट्स तैयार करना शुरू करें, जो आम फहम हो, लोगों के लिए समझना मुश्किल ना हो, और बजाय ज्यादा दलायल देने के एक दो सादा दलीलें इख्तियार कर लें और खूब तफसील से उन पर रोशनी डालें। ऐसी कैसेट्स को अगर सारे मुल्क में आम कर दिया जाए तो उससे खुदा ताला के फजल से बहुत फायदा पहुंच सकता है। तीसरी नसीहत यह है कि बदरस्मों से बचने के खिलाफ मुहिम चलाएं। जब कोई भी मजहबी और इलाही जमात तरक्की करती है तो बाद खतरात भी दरपेश होते हैं। बाद दफा पुरानी बदरस्में उसी तरह साथ चिमटी रहती हैं और जमात में इस तरह दाखिल हो जाती हैं जैसे किसी सेहतमंद सोसाइटी में कोई बीमारियां फैलाने वाला मरीज दाखिल हो जाए। इस तरह बाहर की बदरस्में इलाही जमात के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाती हैं। दूसरे बाज दफा पहले से ही बाज जमातों में बाज आबाई तौर पर रस्में चली आती हैं जो दीन के लिए मौलिक होती हैं। मुझे कल के सवाल और जवाब की मजलिस से अंदाजा हुआ है कि इस तरफ जमात ने खुसूसी तवज्जो नहीं की, इसलिए मैं इंतजामिया को भी मुतवज्जे करता हूं कि वो पूरा जायजा ले मुल्क में कि कौन कौन सी ऐसी खिलाफ इस्लाम रस्में यहां राइज हैं जिनके खिलाफ जहाद होना चाहिए, और जमात में जो इंतजाम है उसके ऊपर भी नजरसानी करें। इसी तरह मैं आप सबसे तमाम अहमदी अहबाब मर्द व जन से यह दरख्वास्त करता हूं कि खुद भी अपने आप को बुरी रस्मों से आजाद करने की कोशिश करें और बदी के खिलाफ बिलअमूम लोगों को नसीहत करें, सख्ती से नहीं लेकिन मोहब्बत और प्यार और हमदर्दी से, और इस बात को अपना शियार बना लें कि नेक बातों की नसीहत किया करेंगे और बुरी बातों से रोका करेंगे। कहा जाता है कि मुख्तलिफ मुल्कों की मिट्टी में भी मुख्तलिफ तासीर होती है, जो इंसान के अखलाक पर भी असरअंदाज होती है। बाद मुल्कों के मुतल्लिक कहते हैं कि उसकी मिट्टी में वफा पाई जाती है। मुराद यह है कि वहां बसने वाले लोग, वहां की अकवाम अमूमन वफादार होती है। कहा जाता है कि बाद मुल्कों की मिट्टी में बेवफाई या गद्दारी पाई जाती है। पता न अगर इसके कि मिट्टी का असर है या कुछ और, ये हम जरूर जानते हैं कि रवायतन बाद मुल्कों में बेवफाई और गद्दारी ज्यादा पाई जाती है। आपकी मिट्टी के मुतल्लिक मुझे ये हुस्न जन है कि आपकी मिट्टी में वफा का मादा पाया जाता है, क्योंकि मैंने ये मुशाहदा किया है कि अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक से बहुत से ऐसे खानदान या लोग हैं जो यहां लंबा अरसा जिंदगियां गुजार के बाहर गए, लेकिन किसी ने मुड़ के अपने मुल्क की तरफ नहीं देखा और ये कोशिश नहीं की कि अपने मुल्क की, जिससे उन्होंने बहुत हद तक इस्तफादे किए, एक लंबे अरसे उनके खानदान यहां बसते रहे और उन मुल्कों से फायदे उठाए, किसी मुल्क ने मुड़ के नहीं देखा, किसी इनमें से खानदान ने ये नहीं देखा मुड़ के कि हम उस मुल्क के साथ वफा करते हुए उसका एहसान का बदला उतारें और उसकी बहबूद के लिए कुछ खर्च करें। सवाए तंजानिया के, तंजानिया में जो खानदान यहां आबाद हुए वो एशियाई लोग जो किसी जमाने में यहां रहा करते थे, फिर यहां छोड़कर वापस कहीं और चले गए, कोई पाकिस्तान आबाद हो गए, कोई इंग्लिस्तान आबाद हो गए। यहां एक से ज्यादा मर्तबा मुझे जाती तौर पर मुशाहदा हुआ कि उन खानदानों के अफराद ने बड़े इसरार के साथ मेरे सामने, मेरे पास रुकूम पेश की कि हमें अपने वतन यानी साबिक वतन तंजानिया से ऐसी मोहब्बत है कि हम चाहते हैं कि उसकी बहबूद के लिए हम कुछ खर्च करें। एक दफा हुआ, दो दफा हुआ, तीन दफा हुआ, बार बार मेरे सामने ये बात आई और वो मुख्तलिफ लोग थे, मुख्तलिफ जगहों के रहने वाले थे। इससे मैंने अंदाजा लगाया कि आपके वतन की मिट्टी में वफा का मादा पाया जाता है, बस इस वफा के मादे को अहमदियत और इस्लाम के लिए भी इस्तेमाल करें। सबसे ज्यादा वफा अपने खुदा से होनी चाहिए। जब आप बंदों के वफादार हैं तो मैं उम्मीद रखता हूं और यकीन रखता हूं कि आप अपने रब से भी वफा करेंगे और उसके दीन को फैलाने के लिए हर मुमकिन सही करेंगे। अल्लाह आपके साथ हो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر إن شاء الله ونشاء سيد الظهر فير
immediately after the Asr, after the Jummah. I'm sorry, inshallah we'll say the Asr prayer immediately after the Jummah prayer. And I am on journey, I'll say 2 rakat. Those who are not on journey, they will complete their 4 rakat without saying Assalamu Alaikum with me. Kya dhyan?